نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة فرقان کی آیت نمبر 54 میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ذات ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر بنا دیا اس کا نسب اور اس کا سحر. سحر سسرال کو کہتے ہیں. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب قادر ہے. تو اگر کسی کو اس چیز کا شوق ہو کہ سسرال کا لفظ قرآن پاک میں کہاں آیا ہے، تو سورۃ فرقان کی آیت 54، اور اسی طرح یہی لفظ سورۃ الحج کی آیت 20 میں آتا ہے. دونوں کو جوڑ لیں، اور صرف پورے قرآن پاک میں یہ لفظ دو ہی دفعہ آیا. سورۃ حج کی آیت 20 میں آتا ہے، يُسْخَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، اور وہ گلا دے گا جو ان کے پیٹوں میں ہیں اور ان کی کھالوں کو. اس کے آگے پیچھے دیکھے تو جہنم کا کچھ عذاب ہے. تو گویا کہ سحر کا رشتہ یا سحر سواد کی زیر سے ہو تو سحر سحر سسرال کو کہتے ہیں. تو اس کا معنی وہ رشتے جو کسی بھی نکاح کے بعد بنتے ہیں. دیکھیں گے کہ نکاح کے ذریعے سے کون سے رشتے بنتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو براہ راست اگر اس کو ایک جوڑے کے اوپر لے کے دیکھیں، تو میں سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ. آج ہم ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس کس رشتے میں کس طرح سے یہ مصالحت ہو سکتی ہے اور رشتوں کو خوبصورت کیسے بنائیں. پھر اسی طرح سسرال کے ناطے سے جو دوسرا رشتہ بنتا ہے وہ ساس اور بہو کا بنتا ہے. تیسرا رشتہ جو ہے یہ سسر کے ساتھ بنتا ہے. پھر چوتھے درجے پہ نند اور دیور، یعنی شوہر کی بہنیں اور ان کے بھائی. اور پھر پانچویں درجے پہ ایکسٹینڈڈ فیملیز، شوہر کی خالہ اور شوہر کے جو اپنے رشتے ہوتے ہیں ان سب کے ذریعے سے جو رشتے بنتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ان سب رشتوں میں جو کی پوائنٹس ہیں تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. ہم تھوڑا سا ان رشتوں کو لے کر ساتھ چلیں گے، اور یہ بات جو آپ سننے لگے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ باتیں ہماری نانیاں دادیاں بھی کہتی تھیں، اور عملی طور پر ہم اپنے سے پچھلی نسلوں کو اس پر فائز دیکھتے ہیں کہ کس طرح شوہر اور بیوی کے تعلق تھے اور کس طرح سے گھروں کے اندر باقی رشتوں کے ساتھ تعلق جڑتا تھا. لیکن آج کا افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ دور ایسا ہو گیا کہ ہم نے بچوں کو اتنا انڈیپینڈنٹ رہنا سکھا دیا، ان کا کردار، ان کا کیریئر، ان کی تعلیم، ان کا پڑھنا لکھنا، یہ بنیادی گول ہے. تھوڑا سا ماضی میں جھانک کے دیکھیے تو بچی کی پیدائش کے ساتھ ہی جو پہلی سوچ ماں باپ کو آتی تھی کہ یہ پرایا دھن ہے. پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بچپن سے ہی بچیوں کی تربیت میں وہ سارے نکتے تھے، اس نے اگلے گھر جانا ہے، ایسے وہاں نہیں چلے گا. اٹھتے بیٹھتے مائیں تانے دیتی تھی، اور خاص طور پہ 12-13-14 سال کی عمر یا اس کے اوپر کی عمر کی بچیوں کو یہ تانے ملتے تھے. ہو سکتا ہے برے لگتے ہوں، ہو سکتا ہے انداز ٹھیک نہ ہو، لیکن ان ساری باتوں سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ایک بچی کو جس مقصد کے لیے پالا جا رہا ہے وہ اس کا ایک گھر بنانا اور اس کو وہاں جا کے نبھا کرنا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو لڑکوں کو بچپن ہی سے جس چیز کا خیال دلایا جاتا تھا، کمانا، کماؤ بوت، یہ ہڈ حرام ہے، یہ پڑا رہے گا، یہ ریڑی لگائے گا، اور اسی قسم کی باتیں. یعنی گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ لوگ فطرت کے قریب تھے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو قوام بنایا، کیونکہ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے مرد کی دے دی بڑائی کی، کہ ایک تو جسمانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے اور ایک کماتا ہے. اسی طرح عورت کے لیے وہ ساری چیزیں تھیں جو اسی آیت کے آگے آتی ہیں، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، اور اس سے آگے کی باتیں. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ پہلے کے تربیت کے انداز میں تھوڑا سب سے فرق تھا، لیکن آج کے دور میں شروع سے ہی دونوں کو کیریئر، پڑھنا، یونیورسٹی، کالج، ڈاکٹر، اور اس قسم کی تربیت دی جاتی ہے کہ شادی ایک پیچھے پڑتا ہوا موضوع دکھتا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھا جائے تو شادی ایک اتنا خوبصورت تعلق ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا. سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है कि मैंने तुम्हारी हम नफ्स बीवियां पैदा की और फिर उन्हीं से जोड़े बनाए जिनसे तुम मवद्दत और रहमत लेते हो। इस रिश्ते की अहमियत के लिए अगर हम कुरान पाक की सिर्फ एक आयत जो सूरत बकरा के बिल्कुल शुरू में आ जाती है, आयत 35 अल बकरा, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, और हमने कहा कि आदम आप भी रहिए और आपकी बीवी भी रहे जन्नत में, वकुला मिन्हा रौगदन हैसु शितुमा, और आप दोनों जितना चाहें खाएं, हाँ लेकिन बला तकरबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब ना जाइएगा वरना जालिम हो जाएंगे। तो इस आयत से एक चीज समझ में आ गई कि इस दुनिया में इंसानियत का सबसे पहला जो रिश्ता कायम हुआ वो शौहर और बीवी का था। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को इबादत कहा। ये मज़ीद नेकियां कमाने का ज़रिया है। ये वो ताल्लुक़ है कि जिसकी बुनियाद पे इंसान के दीन को सिक्योर होने की खुशखबरी दी गई। हदीस में आता है कि जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा दीन महफूज कर लिया, अब उसको बाकी आधे के बारे में फ़िक्र करना चाहिए। और शौहर का बीवी के साथ ख्वाहिश पूरी करना, इसको अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया। और औरत का घर में रहकर घर को देखना, बच्चों को पालना, मर्दों की तरह मैदान जंग में जाकर जिहाद करने के बराबर करार दिया। ये सब बातें अहदीस से मिलती हैं। आज की गुफ्तगू हम बहुत हल्की फुल्की रखेंगे, लेकिन इस मौजू पे अगर आप मवाद लेना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह ए टू जी एक पूरी सीरीज जिसमें हमने किताबो निकाह पढ़ी थी उसमें आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। लेकिन आइए जरा हम थोड़ी सी बातें करते हैं इस सेंस में कि एक बच्ची जो एक घर छोड़कर दूसरे घर जाने वाली है, और इसी तरह इसको अपोजिट भी लीजिए, एक बच्ची अपना घर छोड़ के आने भी तो वाली है ना। और जो हमारे साथी इस वक्त सुन रहे हैं उनको भी बता दूं कि इस वक्त जिस प्रोग्राम में आप सब जमा हुए हैं इस घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई और बहन दोनों की शादी का मौका है। यानी अगर ये अपनी बच्ची दे रहे हैं तो साथ ही भाई की शादी करके यानी बेटे की शादी करके किसी की बच्ची को ला भी रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मौका बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के जज्बात को समझने का जरिया बनता है। तो अगर हम देखें कि इन तमाम रिश्तों को जिनका यहाँ जिक्र है तरतीब के साथ देख लें तो ये सारी चीज़ें बहुत दुरुस्त हो सकती हैं। मैं कुछ आपको कोट वर्ड्स देना चाहूँगी, फिर उसके बाद हम एक एक रिश्ते पे इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं। देखिए चंद चीज़ें हैं, अगर आप उंगलियों की 10 पोरों पे 10 चीज़ें लिख लें, 5 एक तरफ 5 एक तरफ, तो 10 की वर्ड्स या 10 बुनियादें हम देखेंगे कि जो ताल्लुकात को खूबसूरत बनाती हैं, शौहर बीवी का रिश्ता हो या बीवी शौहर का, सास बहू का हो या बहू सास का, ससुर और बहू का हो या बहू और ससुर का, नंद देवर या भाभी का हो या उससे अपोजिट। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें कि इंसान के मिजाज में खिदमत होनी चाहिए, जाने वाली उस घर में खिदमत का जज्बा लेकर जाए, यानी मैंने खिदमत करनी है करवानी नहीं। फिल्मों को देखकर नॉवेल्स को पढ़ने के बाद लड़कियां जो ख्वाब देख के ससुराल में जाती हैं फिर वो ख्वाब बड़ी जल्दी चिकनाचूर होते हैं, और ख्वाबों के वो शीश महल जब टूटते हैं तो फिर उसकी किरचियाँ हाथों में आती हैं और आंखों से आंसू निकलते हैं, फिर माँ ही से बात करती हैं पीछे। हालांकि अगर आप देखिए दोनों को साथ लेंगे, बीवी शौहर की खिदमत की नीयत करें जिस हद तक कर सकती है और शौहर बीवी की खिदमत की फिक्र करें। देखिए खिदमत में क्या है, खा दाल मीम, हर एक की रिक्वायरमेंट फ़र्क होगी। शौहर को बीवी से जिस चीज़ में खिदमत चाहिए, हो सकता है उसका घर साफ करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, सीना और इस तरह की वो चीज़ें जिससे घर साफ सुथरा रहे, बच्चों की तरबियत में खिदमत चाहिए शौहर को। इसी तरह बीवी को भी तो शौहर से कुछ चाहिए ना, तो बीवी को शौहर से क्या चाहिए कि शौहर जवाहिर रहते हुए अपनी तमाम जिम्मेदारियां खुद निभाने का इरादा करे। वो काम जो तुम्हारी तबीयत के एतबार से मुश्किल है बोझल है मैं उसको करूँगा। इसके साथ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत ताल्लुक बनता है। सास और बहू में ले लीजिए, बहू घर में जाए तो ये ना सोचे कि मैं अकलौती माँ बाप की अकेली थी, वहाँ भी देखना ज़रा मेरी क्या शान होगी, मैं पहली बहू हूँ, मैं सबसे छोटी बहू हूँ, ये मत सोचे कि घर वाले मेरे आगे पीछे फिरेंगे। और बाज़ दफ़ा बच्चियों की तरबियत इस तरह की जाती है कि हकीकत में वो अपने घर वालों की आंखों का तारा होती हैं, प्यारी लगती हैं, बेटियां सबको प्यारी लगती हैं लेकिन बहुओं को प्यारा बनना पड़ता है। बेटी कुछ भी ना करेगी ना तो वो फिर भी अच्छी ही लगेगी, और बहू सब कुछ करके भी अच्छी लग जाए तो बड़ी बात है। तो लड़कियों की मिजाज में खिदमत होनी चाहिए। खास तौर पे आप देखिए सास ससुर के साथ, नन देवर के साथ, घर में जो रिश्ते हैं, खिदमत जीतती है। आपकी घड़ी आपके बाजू पे क्यों बंधी हुई है? क्योंकि वो आपकी खिदमत करती है। आप अपनी गाड़ी को धोते धलाते साफ रखते क्यों? क्योंकि वो गाड़ी आपकी खिदमत करती है। एक दो बार अगर आपको अपनी गाड़ी की वजह से शर्मसारी हो, ऐन वक्त पर स्टार्ट ना हो या बीच सड़क पर रुक जाए, पता चले कि ये तो ख़राब हो गई, तो फिर आप उसकी कितनी को खिदमत करेंगे? ठीक ना हुई तो हो सकता है कि उसका मुकाम कबाड़िए की दुकान होगी। तो खिदमत जीती है। बाज़ वक़्त बड़ी मामूली शक्लो सूरत वाली लड़कियाँ और बाज़ दफ़ा कुछ ना आने वाली लड़कियाँ, ना बात करनी आती है ना काम करना आता है, लेकिन इतनी खिदमत गुजार होती हैं कि शौहर और घर वालों के दिल में जगह बना लेती हैं। खिदमत जीतेगी। आप भद्दी से भद्दी चीज़ को अपने घर में खुद जगह देते हैं क्योंकि वो आपका काम करती है। आपका घर साफ होता है वैक्यूम क्लीनर से आप लाके रखते हैं, लेकिन अगर वैक्यूम क्लीनर हो और काम ना करे तो आप उसको नहीं रखेंगे। तो खिदमत बहुत बड़ी बात है। इससे आप देखेंगे कि इंसान जगह बना लेता है। इसी को अगर मैं दूसरे एंगल में भी साथ ही रख लूँ, हमारे यहाँ अब तो मुझे नहीं अंदाज़ा क्योंकि वेस्ट में आए हुए काफ़ी देर हो गई, लेकिन एक जुमला बड़ों के ज़ुबान से सुना हुआ कि भाई मुन्ने के अब्बा, अब मुन्ने की शादी कर दो, मुझसे और काम नहीं होता। सासें और ससुर अपने बेटे की शादी किस सोच के साथ करते थे कि अब घर में एक काम करने वाली आ जाए। और ख़ास तौर पे हमारे पंजाबी कल्चर में इस चीज़ को बहुत मिसयूज़ किया गया और बहू को खिदमत वाली मशीन समझा गया। सिर्फ शौहर की नहीं, सास ससुर की नहीं, पूरे घर की खिदमत। देखिए जो आए वो करने की नीयत से आए, लेकिन जो बुला रहे हैं वो करवाने की नीयत से ना करें। बात सासें अच्छी भली होती हैं हर मामले में भाग भाग के आगे, लेकिन बहू के मुकाबले में उनका दिल होता है चाय भी हमें बेड पे दी जाए। तो सास भी खिदमत का जज्बा रखें। अच्छी बहू कहेगी अम्मी मैं आपकी खिदमत करती हूँ, और अच्छी सास कहेगी बेटा तू थक जाती है मैं तेरी खिदमत करती हूँ। देखिए ये चीज़ें बहुत जीती हैं। एक वक्त आता है कि इंसान फिर अपनी बहुत बड़ी जगह बनाता है। ख़ास तौर पर आप देखिए कि ये चीज़ें फिर दिलों में जगह बनाती हैं। जो खून के रिश्ते होते हैं ना, उसमें अल्लाह ने मोहब्बत दिलों में डाल दी, लेकिन शहर के रिश्तों में मोहब्बत डलवाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तो दूसरी चीज़ आप अपनी उंगली के दूसरे पोर पे लिख लीजिए, कुर्बानी का जज्बा। देखिए सबसे बड़ी कुर्बानी तो अल्लाह ने औरत से मांगी ना, कि वो अपना घर छोड़ के शौहर के घर आती है। मर्द वैसे ये दे भी नहीं सकते थे कुर्बानी, और अगर आ भी जाते तो शोर ही मचाते। अल्लाह को पता है औरत का मिजाज कितना बर्दाश्त करने वाला, कॉम्प्रोमाइजिंग है। एक जगह से उठ के वो दूसरी जगह आ जाएगी तो निभा लेगी। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, आपके बेटों को जाना पड़े दूसरी जगह तो वहाँ क्या हालात हो, वो सास ससुर की क्या शामत आई हो जहाँ लड़का हिजरत करके पहुँच गया। तो मर्द से ज़्यादा औरत कुर्बानी देती है। आप में से कुछ ऐसी भी सिस्टर्स होंगी इस वक्त सुनने वालों में जो 20 साल से मैरिड हैं, कुछ 40 से 20 से, और कुछ कुछ शिकवे भी होंगे, मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं रहते, मेरी सास को तो मुझसे कोई प्यार नहीं। अच्छा इतनी भी नहीं बात होती, इससे भी ऊपर बात हम सोचते हैं, मेरी देवरानी बड़ी अच्छी लगती है, जिठानी ने तो बहुत हाथों में रखा हुआ, दिस एंड दैट, कभी ऐसा सुना आपने? आप खुद से साथ ही साथ क्वेश्चन पूछिए, क्या मेरे दिल में दूसरों की खिदमत का जज्बा है और क्या मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ? देखिए कुर्बानी कौन सी, बकरे की और दुम्बे की कुर्बानी नहीं देनी होती। इन रिश्तों को निभाने के लिए जो सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है ना, वो जज्बात की कुर्बानी है। बल्कि आप इस कुर्बानी लफ्ज के साथ जज्बात की कुर्बानी रखें। मसलन वही 5 रिश्ते इस वक्त भी मेरी निगाहों में, इन्हीं को तरतीब से देखें। शौहर के साथ कुर्बानी क्या, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आपका मिजाज कुछ और था, शौहर कहीं और पले बढ़े। हत्ता कि आप देखिए कि कज़न जिससे एक लड़की की शादी होती है, जिसके साथ बचपन से उठना बैठना है, शोहर बनने के बाद पता चलता है कि उसके अंदर एक और इंसान है। फ्यूंसी और शोहर में बहुत फ़र्क होता है, मिजाज का फ़र्क है। जज्बात को कुर्बान कीजिए। कभी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, आप सोना चाहते हैं, शोहर कहते हैं मुझसे बातें करो। कभी आपको फ़ोन पे बातें करने की कुर्बानी करनी पड़ती है। कभी आपको अपने पेरेंट्स के साथ बहुत लंबी चौड़ी राहों रस्म रखने की कुर्बानी करनी पड़ती है। ये सारी कुर्बानियाँ मिलती हैं फिर बात बनती है। इसी तरह मर्द को भी बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। देखिए अकेली जान है, मर्दों की इतनी ज़रूरियात भी नहीं होती, थोड़ा भी कमा लिया तो खैर है, ना भी कमाया तो माँ बाप खुशी खुशी खिला पिला देते हैं। कहीं नहीं गए, चलो घर वालों ने खुद ही अरेंज किया। लेकिन शादी के बाद जब वो एक शौहर बनता है, उसको अपने आराम की कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसको भी बहुत सारे जज्बात अपने कुचलने पड़ते हैं। बस मर्द बहुत जल्दी करते हैं, वो समझते हैं कि ये सीखी सिखाई पढ़ी पढ़ाई आई। हालांकि आप देखिए कि सीधा साधा जो कल्चर था उस दौर में, तो शादी से पहले लड़कियों को अकल समझ भी नहीं होती थी, मर्द भी कोई इतने होशियार नहीं होते थे। खुद एक दूसरे के साथ निभा करते हुए सीखते सिखाते कई साल लग जाते थे, जिस्मानी और जहनी तौर पर मिच्योर होते हुए। तो कुर्बानी जज्बात की बहुत लाजिम है। सास ससुर के साथ औरत क्या कुर्बानी दे सकती है, यानी बहू क्या कुर्बान करे। आप देखिए कि अन्ना को कुर्बान कर दे, उनके बीच में जाने से पहले दिल में चंद बातें लड़कियों को बिठानी है अपने लिए। पहली बात क्या है, एक लड़की यहाँ जैसी भी थी, ये इसका अपना घर था। कुछ टिप्स बोलूंगी, अगर आप नोट कर लें तो फायदा ही होगा। नंबर एक, आपका घर अब ये नहीं वो है। शादी के अगले ही दिन से आप कहेंगी मुझे अम्मी के घर जाना है। अब ये आपकी अम्मी का घर है, शादी से पहले ये आपका घर था, लेकिन आप खुद बोलेंगी अम्मी के जाना है। तो माँ को क्या कहती हैं, बस अब मुझे अपने घर जाना है। फर्क समझ रहे हैं, इस फर्क को लिखिए। मैंने देखा है वो बच्चियां जो माँ के घर में तिनका भी तोड़ती नहीं थी, अपने घर के बारे में इतनी समझदार साबित होती हैं कि सोच समझ के चलती हैं। और सफाइयाँ सुथराइयाँ, ये मेरा घर है, तो इस रियलिटी को मानिए, ये घर अब आपका नहीं है। अब जब भी आप इस घर में आएंगी ना, मेहमान बन के आएंगी, और आपको पता है कि मेहमान हर वक्त का नहीं होता, एक खास वक्त के साथ साथ मेहमानी ख़त्म हो जाती है। फिर दूसरी चीज़ जो आपको इसी के अंदर अपने अंदर लाने में मदद देगी, वो क्या है कि नए रिश्ते कायम होते ही पुराने रिश्तों को ख़त्म नहीं करना, बल्कि इन रिश्तों का रूप बदल जाएगा। मसलन अगर आपकी शादी हो रही है आपके शौहर से, आप सोचें कि ये नया रिश्ता अब उनके पुराने सारे रिश्ते ख़त्म कर दे, दैट्स इट। ना वो अब किसी का बेटा रहे ना भाई रहे। तो याद रखिए कि आपके साथ आपके शौहर की शादी हुई है, लेकिन माँ बहन भाई बाप उन सबके साथ कोई ताल्लुक नहीं टूटा, वो आज भी उनसे वैसे ही प्यार करते हैं, और बल्कि ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं लोग। एक जुमला बहुत शऊर से बोलूंगी, अगर आप लिख सकें तो फ़ायदा बहुत होगा, कि नए रिश्ते नए लिबास की तरह होते हैं। जिस तरह हम नए कपड़ों को हर किस्म के दाग धब्बों से बचाते हैं ना, इसी तरह नए रिश्तों में दाग धब्बों से बचाना बड़ा लाजमी है। अगर शादी के शुरू के दिनों में ही दिलों में गिरें पड़ जाएं, बदमजगियां पैदा हो जाएं, कोई बाल आ जाए, तो बाज़ दफ़ा यही घरों के टूटने का जरिया बनता है। कई दफ़ा की दी हुई मिसाल आज फिर दूंगी कि चेन कितनी ही मोटी क्यों ना हो, जहाँ से वो एक एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जाती है ना, वहाँ से बहुत नाजुक होती है चेन। जब भी टूटती है ना, कड़ी में कड़ी डलने वाली जगह से टूटती है, तो दो घरों का जोड़ भी इसी तरह नाजुक होता है। लड़की को शुरू में ख़ास तौर पर बहुत होश के साथ रहना चाहिए। कोई हर वक्त अपने घर की बातें, हम ऐसे हम ऐसे, हमारे तो ऐसे होता आपके तो ऐसे, हमारे तो ऐसे, वो ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह बाज़ दफ़ा लड़कियों की ज़िंदगी में पहले से कुछ तजुर्बात होते हैं, ख़ास तौर पे फी ज़माना जो दौर चलता है, स्कूल कॉलेज और उससे भी भड़के कुछ और चीज़ें। तो बात का खुलासा क्या निकला कि इंसान को ऐसे वक्तों पे बहुत ज़्यादा सोच समझ के साथ काम करना चाहिए कि जहाँ किसी भी बदमजगी का खतरा हो। कई ऐसे घराने सिर्फ इसलिए टूट गए कि शुरू की रस्मों के मौके पे किसी का दिल बुरा हो गया। एक सिस्टर ने एक बिल्कुल अपनी देखी बात सुनाई कि एक मौके पे दो शादियां इकट्ठी थी और दो दूल्हे थी, ये तो बड़ी आम बात है, लेकिन शायद इससे बढ़ के उन्होंने सोचा कि लोगों को खुश करने का तरीका है। तो दो स्टेज बनाए, एक स्टेज एक दुल्हन के कपड़ों की मैचिंग का, दूसरा दूसरी की। अब देखिए कि जिन चीज़ों में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं ना, उसका नतीजा क्या होता है, एंड पे बदमजगी होती है। हुआ क्या कि जब एक दुल्हन के ससुराल वाले आए, तो गलती से वो दूसरी दुल्हन के स्टेज या उसकी कुर्सियों पे बैठ गए, क्या बड़ी बात थी। बाद में किसी ने उनको एहसास दिलाया कि आप इधर नहीं इधर आ जाइए, सिर्फ इस बात पे बाद में लड़की के साथ बहुत ज्यादा बदमजगी हुई कि हमारी बेइज्जती की गई कि हमें उन सोफों से उठाकर इधर बिठाया गया। तो ये अधूरी बातें होती हैं। देखिए इस वक्त हम रस्मों रिवाज पे बात नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत है कि आज रस्मों ने हमारी शादियों को हमारे लिए बिल्कुल एक नासूर बना दिया है। तो लिहाजा बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और चीज़ जो इस सारे मामले में इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है वो क्या है कि दोनों तरफ आजिज़ी हो. पहली चीज़ क्या थी? खिदमत का जज्बा. दूसरी थी जज्बात की कुर्बानी. और तीसरी है आजिज़ी. किस में? सिर्फ लड़की में. लड़के में नहीं, बात नहीं बनेगी. देखिए बराबरी पे मामला चलता है. कुरान पाक की एक आयत, वल हुरुमात तो क़िसास. हुरमतें तो बराबर की होती हैं, इज़्ज़त करोगे तो इज़्ज़त मिलेगी. बस लड़कियां सिर्फ खुद आजिज़ मिजाज बनी रहती हैं और मर्दों की तरफ या घर वालों की तरफ से बड़े बड़े जुल्म भी बर्दाश्त करती हैं. ये भी दुरुस्त तरीका नहीं. दोनों तरफ एक बात होनी चाहिए, शुक्रगुजारी का जज्बा हो. आप आजिज़ी के साथ शुक्रगुजारी का लफ्ज़ लिख लीजिए. दोनों शुक्रगुजार हों. शुक्र है आपने मुझे बेटी दी, शुक्र है आपने मेरी बेटी ली, थैंक यू फॉर मैरिंग मी, शुक्र है आपने मुझे चुना. इस तरह के जज्बे हों. पांचों रिश्तों को लिख लें, ऊपर और नीचे लिखें. शौहर बीवी के आगे शुक्रगुजार हो कि आप जैसी अच्छी बीवी मुझे मिली, मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बन गई. बीवी भी शौहर से ये करे. और हमारे यहाँ गानों में क्या सिखाते हैं? तुम्हें देता कोई नहीं था, हमें लेता कोई नहीं था, हाँ चलो मिल गए, शुक्र करो हमने हाँ कर दी. अब आप सोचिए, जब आप ऐसी बातें सुन सुना के गानों में टप्पों में बेटियों को भेजते हैं तो वो क्या दिमाग में किबर लेके बैठी होंगी ना. बाज़ औरतों के मिजाज में बहुत नशूज होता है. मेंटली सोचती हैं, हम तो आले घर से थे, ये पता नहीं किन के नसीब में बढ़ गए. और बाज़ दफ़ा अगर ससुराल ज़रा दीनदार ज़्यादा हो तो आप देखते हैं कि फिर लड़कियाँ किसी बात में उनको लेती नहीं है. अब्बा का घर अगर पैसे वाला ज़्यादा है या मॉडर्न ज़्यादा है तो लेते हैं नहीं. शुक्रगुजारी का जज्बा हो. फिर इसी तरह आप देखिए कि सास बहू में शुक्रगुजारी कैसे हो. आप सोचिए ज़रा एक लम्हे के लिए, सास के सामने शुक्रगुजार कैसे बनेंगी? क्या कुछ नहीं किया उस औरत ने आपका मुस्तकबिल बनाने के लिए? मुझे ऐसे लगता है कि जो सासें बहुओं को तोहफा देती हैं वो तो कोई नहीं ज़िंदगी में दे सकता. एक बच्चे को पेट में रखा, पैदा किया, दूध पिलाया, कितनी रातें जागी, फिर उसको स्कूल में डाला, स्कूल छोड़ने गई, फिर उसको सबक याद करवाया, उसके इम्तिहानों के मौके पे परेशान हुई, कितनी तकलीफ़ें सही, कई साल तक सुबह उसका लंच बना के भेजा, स्कूल जाने के लिए उसके कपड़े तैयार किए, फिर उसका कैरियर बनाया, फिर उसको अदब सिखाए, इतना कुछ कर करा के पला पलाया एक बच्चा एक लड़की की नज़र कर दिया. बताइए इससे भी ज़्यादा कोई खूबसूरत तोहफा ज़िंदगी में हो सकता है? तो सास की कदर इसलिए कीजिए कि उसने अपनी सारी मेहनतों का फल आपको दे दिया. सच बताएं, अगर आपके शौहरों को आपकी सासों ने अच्छे अखलाक ना सिखाए होते, वो गाली गलौज के आदी होते बचपन से, तो आज कौन गालियां खाता? बीवियां खाती हैं ना. जिन बच्चों की तरबियत में कमी रह जाती है तो सारी ज़िंदगी बीवियां और बच्चे और घर वाले जो हैं वो उसका खमियाजा भुगतते हैं. फिर आप देखिए कि उस सास ने इतना कुछ करके आपको वो दे दिया, तो क्या उस सास से आप मोहब्बत नहीं करेंगे? सास से मोहब्बत करने की तो एक बहुत बड़ी वजह आपका शौहर है. क्या आपको उसने अपना बेटा दे दिया? फिर आप देखिए कि जब इस दर्जे के साथ आप आते हैं तो सिर्फ शौहर ही नहीं दिया आपको आपकी सास ने, जिस घर में आप गई राज कर रही हैं ये घर किसने बनाया? देखिए जिस घर को आज आप अपना घर कहने लगी हैं ना, आज से 20 साल पहले एक औरत इसको अपना बना चुकी थी. ससुराल का जो घर होता है वो 20-25 साल में इस दर्जे पे पहुंचता है जहाँ एक नई आने वाली बच्ची फिर बहुत आराम और सुकून से रहती है. एक एक बर्तन उन्होंने जोड़ा होता है, एक एक कुर्सी मेज़ उन्होंने मेहनत से जमा की होती है, घर साफ रखे होते हैं. तो घर आपको दे दिया, आपको वो बनाना ही नहीं पड़ा जो उन्होंने बनाया, तो लिहाजा उसके ऊपर कदरदानी हो. फिर इसी तरह देखिए और बहुत कुछ, सासें कितने लाट चाव करती हैं, तो इसके ऊपर शुक्रगुजारी का जज्बा रखें. फिर ससुर, आप देखिए सारे रिश्ते, मैं इन सबको इस तरह सोचती हूँ कि शादी से पहले क्या क्या होता है इंसान के पास. माँ होती है, होती है. माँ का नेमुल बदल सास, बाप का ससुर, बहन का नन और देवर भाई की जगह. सिर्फ एक रिश्ता पहले नहीं था और वो शौहर का था. इस एक रिश्ते की खातिर 4-5 रिश्ते जो नए मिल गए इनको चेंज कर लें, उनकी अपनी जगह है. अब ये ना कहें कि माँ सास माँ बन जाए, नहीं, माँ सास नहीं बन सकती या सास माँ नहीं बन सकती. फिर हम जो कहते हैं फिर वही डिमांड करते हैं, क्योंकि माँ तो बेटी को वो डांट देगी तो कुछ नहीं लगेगा, और सास ने डांट दिया तो मसला बन जाएगा. इसी तरह दूसरी तरफ भी बात है, आपकी बेटियां 10 बजे तक सो सो के नहीं उठती हैं, आप कहते हैं कोई नहीं अब यही तो देना है, और बहू बेचारी इतनी जिम्मेदारियां निभा के अगर सुबह 8 से 9 बज गए तो आप कहेंगे अम्मा ने सिखाया ही क्या। तो लड़कियों को ये बात याद रखनी चाहिए कि आप या आपके माँ बाप की तरबियत का इम्तिहान है, या उनको बातें सुनवा लें या आप उनके साथ अच्छा मामला कर लें। इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके ताल्लुकात खूबसूरत हो जाएंगे अगर शुक्रगुजारी हो। एक लफ्ज़ होता है मदर और एक लफ्ज़ होता है मदर इन लॉ, फ़र्क सबको पता है। लोग कहते हैं कहाँ ससुराल का जिक्र है, जिक्र माँ बाप में ही है, अलग से कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि अपने और शौहर के माँ बाप में कोई फ़र्क ही नहीं है। अल्लाह कहते हैं इनको अपना ही समझो। देखिए आप लिख के देखिए मदर इन लॉ, इन लॉ को अगर हटा दें पीछे आपकी असल मदर निकल आई, और अगर एहसान करना चाहते हैं ना तो मदर इन लॉ को मदर इन लव कर दें। एक दफ़ा प्यार दे के देखें कितना आपको मिलेगा उसके बदले में, ना भी मिले आपका दिल बहुत मुतमईन होगा कि मैंने कभी इनका बुरा नहीं चाहा। फिर इसी तरह आप देखिए अगली चीज़ जो हमने देनी है वो मोहब्बत है। सब कुछ दे देते हैं, बाज़वा खिदमतें भी करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, मोहब्बत नहीं देते। मोहब्बत करें, दिल से दुआ मांगे अल्लाह मुझे अपनी सास से मोहब्बत हो जाए, मुझे शोहर से मोहब्बत हो जाए। अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना, अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत डाल दे। अल्लाह मुझे अपनी नन से मोहब्बत हो, मांगिए देखिए ये मोहब्बत फिर क्या करेगी। मोहब्बत फातिहे आलम, दिलों को जीत लेती है, ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी, तो लिहाजा मोहब्बत करें, और जब मोहब्बत होगी ना तो फिर एहतमाम भी होगा, फिर इजहार भी होगा, फिर आप उनकी केयर करेंगे। तो मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, दिल साफ़ रखेंगे ना खुद ब खुद मोहब्बत होगी इंशाल्लाह ताला। फिर इसी तरह आप देखें कि मोहब्बत करने के लिए क्या ज़रूरी है कि अगला बंदा बहुत अच्छा हो। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको अपनी माँ की हर आदत पसंद है, क्या आपकी अम्मी में कोई खामी नहीं है, लेकिन ज़रा माँ को चोट तो लगे फिर देखिए बेटी के दिल पे क्या होता है। तो क्या आपकी माँ बीमार हो तब उसको दवा देती है ना, तो सास बीमार होगी तो नहीं देंगे। माँ बीमार है तो क्या उसके सर में तेल नहीं डालेंगी, तो सास का नहीं सर दबा सकते। हम सिर्फ थोड़ा सा सोच को बदल लें वही रिश्ते, और यकीन करो उससे ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी। फिर अपनी माएँ तो कभी खुश भी नहीं होती, सासें तो फ़ौरन खुश भी हो जाती हैं। सिर्फ दिल साफ रख के देखें आप, केयर करें, उनका ख्याल रखें। फिर इसी तरह आप देखिए कि अगली चीज़ नरमी, जिसको कहते हैं ना कि ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जिसको नरमी मिली उसको सारी खैर मिल गई, नरमी से बड़ी खैर किसी को नहीं दी गई, मामले खूबसूरत हो जाते हैं। नरमी और मोहब्बत और इन सब चीज़ों में क्या फ़र्क है? नरमी को मैं एक तो फ्लेक्सिबिलिटी से समझती हूँ, और दूसरा नरमी को मैं इस तरह सोचती हूँ कि जैसे बंदा दूसरे को कॉर्नर दे, हो गई कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, ये ना सोचे कि अगले से कोई बुराई नहीं होगी, अगला कुछ नहीं करेगा, यानी आप हल्का सा ज़रा हाथ रखें, लोगों के साथ मामला ऐसे करें कि वो आपको कुछ ना कह सकें। जैसे एक कहावत है ना कि किसी ने ज़ुबान से कहा कि तू 32 दुश्मनों के बीच में कैसे रहती है और इतनी महफूज, यानी 32 दांत है ना, किसी भी दांत के नीचे ज़ुबान आएगी तो कटेगी, तो कहा तू कैसे बचती है, तो कहा नरमी की वजह से, इतनी नरमी से बचती हूँ। तो जितनी नरमी होगी ना, तो वो सूरत अलमुमतहना में भी आयत आती है कि जब तुम अपने दुश्मनों के साथ नरमी और मोहब्बत का मामला करोगे तो वो तुम्हारे गहरे दोस्त बन जाएंगे। कान नहु वलीयुन हमीम, तो दुश्मनों को दोस्त बनाने वाली चीज़ नरमी है। हमें क्या अच्छा लगता है, सख्त चीज़ के नरम, कपड़े कैसे पसंद है, नरम के सख्त। क्या दिल चाहता है हमारे सामने जो शख्स है वो चीखे चिल्लाए या नरम बात करे। नरम हाथों से इंजेक्शन लगवाते हैं कि सख्त हाथों का इंजेक्शन अच्छा लगता है, जो नरम हाथों से रोटी छाड़ते हैं ना उनकी रोटी नरम होती है, और ऑपोजिट भी है। फिर इसी तरह अगला जज्बा सब्र का है, सबको सब्र करना पड़ता है, एक लफ्ज़ है, औरत को भी सब्र करना पड़ता है, मर्द को भी करना पड़ता है, सास को भी, बहू को भी, ससुर को भी, नंद को भी, देवर को। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हम सबको मुख्तलिफ बनाया। आप कहाँ से उठ के कहाँ गए, हालात ही फ़र्क है, तो ना वो आप जैसे बनेंगे ना आप उन जैसी होंगी, करना फिर आपको ही सब्र पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा हैं आप थोड़ी हैं। बेहतरीन मामला क्या होता है, अखलाक के साथ, और थोड़े से तहम्मुल और सब्र के साथ अपनी अच्छी बातें उनको दे दें और उनकी बुरी बातें निकलवा दें। और अगर आप में कोई बुराई है तो अपने ससुराल की अच्छी आदत को देखकर वो ढाल लें। सब्र बहुत ज़रूरी है, इसके साथ बहुत मामले बदल जाते हैं। कोई बात है उसको बर्दाश्त करें, फौरन टप से ना कह दें। कोई बुरी बात देखें तो उसको दिल में रखें, अच्छी देखें तो इजहार करें। जिसको हम कहते हैं ना कि जुबान छोटी दिल बड़ा, यही है। तो अगली टिप, बर्दाश्त, टॉलरेंस। अफसोस की बात है कि आज के तर्ज़ तरबियत में टॉलरेंस नहीं सिखाई जाती। बच्चे के मुंह से बात बाद में निकलती है, पूरा उसको पहले कर देते हैं, सब्र कहाँ आएगा। पहले आप देखिए, एक बाथरूम होता था घर में, 10-12 लोग थे, सब्र करना ही पड़ता था, बर्दाश्त भी होती थी। कोई देर भी लगा लेगा क्या करेंगे, हैं। खाना थोड़ा सा होता था, सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाता था, वक्त भी लगेगा, एक एक रोटी पकेगी। अब तो अल्लाह ने हर नेमत दे दी, बच्चे बात बाद में करते हैं, पूरी पहले। तो सबको सब्र करना पड़ता है, लड़की को तो ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि वो जा रही है। आप देखिए ना, वो ससुराल वाले तो सब अपनी जगह पे जमे हुए हैं, उठ के तो आप गई हैं अपनी जगह से, तो लिहाजा आप अपने आप को बदलें। फिर इसी तरह आप देखिए, अगली चीज़ होशमंदी। मामला फहमी होनी चाहिए लड़कियों में, हालात देखे, लोगों की नफसियात समझे। घर का हर बंदा जो होता है ना, ये मुख्तलिफ चीज़ से खुश होता है। मसलन अमूमन ससुर जो होते हैं ना, उनको अच्छे खाने अच्छे लगते हैं। अगर बहू उनके मिजाज की कोई चीज़ बना के उनके सामने रख देती है, खुश हो जाएंगे। सासों को अमूमन तारीफ़ अच्छी लगती है, चार लोगों में बैठ के कह दे अम्मी जी तो बहुत अच्छी है, मुबालगा नहीं, लेकिन ढके छुपे तरीके सलीके से बस कह देंगे मेरी सास मेरा बड़ा ख्याल रखती है। आप देखेंगे कि सास इसी से बहुत खुश हो जाती हैं। शौहर साहब किस बात से खुश होते हैं? आप कभी भी उनकी बुराई दूसरों के सामने ना करें। देखिए, शौहर बीवी का रिश्ता जिस्म और लिबास का रिश्ता है, अल्लाह ने खुद ही कह दिया। बहुत कुछ एक दूसरे का खुलता है, और ख़राबियाँ भी होंगी, कमियाँ भी होंगी, दोनों में होंगी। कभी दूसरों के बीच में बैठ के अपने शौहर को क्रिटिसाइज़ ना करें। अगर आपने अपने शौहर की अना को ख़त्म करना है ना, तो आप दूसरों के बीच में उसकी बुराई कर दें। अकेले में 10 बातें कर लें, प्यार से 20 सुन लें, कोई हर्ज नहीं, बेतकल्फी है, दोस्ती है। लेकिन दूसरों में आप एक दफ़ा उसकी बुराई करेंगे, आपको तक मर्द की अना पे चोट पड़ती है, और इसका बदला लेने के लिए फिर वो 10 जगह जाके आपकी बुराई करेगा ताकि मेरी अना को सुकून मिले। कभी क्रिटिसाइज ना करें, और ख़ास तौर पे उसके मैके यानी आपके ससुराल के सामने। जिस हद तक इज्जत दे सके दें, ससुराल में, आप अपने मैके में कभी शौहर की बुराई ना करें। वो लड़कियां कभी नहीं जीती जो अपने ससुराल या अपने शौहर की बुराई मैके में करें। आप देखिए ना, अगर आपने अपने शौहर की बुराई माँ बाप से की, दिल दुखेगा ना, भाई से की दुखेगा। अब जब आप शौहर की बुराइयां करती हैं, अब हुआ क्या, 6 माह बाद आप चले गए मिलने महके में, तो उनको तो सारी बातें याद है ना कि ये हमारी बेटी के साथ ऐसे करता है, तो वो ज़रा मुंह सुजाएंगे, इज्जत नहीं करेंगे, फिर भी आपको ही दुख होगा। आपको ना पूछें, आपको परवाह भी नहीं, लेकिन आप कहते हैं मेरे शौहर को बहुत पूछो। तो जब आप बुराइयां करेंगी ना, तो कभी खुश नहीं रहेंगे। तो कभी महके में बुराई ना करें। और अगर आप महके वाली या अपनी बेटी को भेज रही हैं ना, तो कभी अपनी बेटी की ज़ुबान से उसके महके की बुराई सुन के उसको ना थपथपाएं, बल्कि उसको कंडेम करें। नहीं, तुम्हारा कसूर होगा, नहीं तुम्हारी गलती है, वो ठीक है। इससे क्या होता है कि फिर दोनों ख़ानदान करीब आने लगते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और चीज़ जो बहुत ही फ़ायदा देती है इन रिश्तों को खूबसूरत करने में, वो क्या है कि एक दूसरे के लिए एहतमाम करें। एहतमाम करना और आप कहेंगे ऊपर मोहब्बत की बात हुई थी, फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हम दिल से बाज़ दफ़ा प्यार भी करते हैं, लेकिन हम उसको एक्सपोज नहीं करते। एहतमाम को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जैसे कुछ उसका इजहार करें, शो ऑफ करें। मसलन शौहर के लिए एहतमाम क्या है? उसको पता लगे कि मेरे लिए बीवी पहनती है, ओढ़ती है, मेरे आने पे घर साफ है, बेडशीट चेंज करना, उसकी पसंद को कोई खाना बनाना। ये छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं जो मोहब्बत को आसान करते हैं। कभी आप बोल के कह नहीं सकते, मुँह से लिख के दे दें। यकीन करें, तहरीर इंसान के लिए, जज्बात के इजहार के लिए बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आजकल तो 100 किस्म के तरीके हैं, टैक्स कर दें, हर वक्त हाथों में हमारे मैसेजिंग है। पहले दौर में तो ख़त भी लिख के कबूतर को देना पड़ता था, हाँ, पढ़ने से पहले पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन लिखिए, इख्तमाम करें, کبھی ان کو کوئی گفٹ دیا، کبھی ان کو وقت دیا، ان کے آفس میں فون کیا، یعنی اس طرح کی چیز کے جسے ان کو لگے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ساس سسر کے لیے اہتمام کیا آپ کر سکتے ہیں. صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ٹیبل پہ ان کے لیے چائے ناشتہ لگا دیں. آپ کو پتہ ہے یہ بوڑھے کیا کھاتے ہیں، بوڑھے اتنے ہوتے نہیں ویسے آج کل کے سسرال. ایک بچی وقت ایک مہینے سوا ڈیڑھ مہینے میں سارے گھر کو سمجھ جاتی ہے، ساس کب اٹھتی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں، سسر کب اٹھتے ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں، میاں سب کیا کرتے ہیں، گھر والے، نند کس وقت اٹھ کے اسکول جاتی ہیں، دیور کس وقت کام پہ جاتے ہیں. ایک ڈیڑھ مہینہ ذرا خاموشی سے دیکھیے، اس کے بعد آپ چپکے چپکے ان کے لیے اہتمام کر دیں. رات سونے سے پہلے ہی جا کے نیچے دوسروں کے سونے کے بعد وہ چیزیں رکھا ہے کہ جس کو دے کے سب خوش ہوں. اگر چھوٹا دیور ہے آپ اس کا چھوٹا سا کوئی لنچ باکس، کوئی سینڈوچ بنا کے فریج میں اس کے نام پہ رکھ دیں، ود لو کر دیں، کچھ بھی کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو آملیٹ پسند ہے تو انڈے میں کچھ چیزیں ڈال کے بنا کے رکھ دیں اور ساتھ پین کے ساتھ لکھ کے رکھ دیں کہ جسٹ بس آپ اس کو بنائیں، یعنی کئی چیزیں ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ساس سسر تو بےچارے فجر کے بعد ان کو چائے کی ایک پیالی مل جائے تو اس پہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے گھر میں پھول لگے ہوتے ہیں، دو پھول لا کے ٹیبل پہ رکھ دیں. چیزیں انہیں کی ہیں، اسی گھر سے آپ لیں گی، لیکن اہتمام کریں. گھر اپنا اچھا سا کوئی برتن نکالیں، ساس کا نہ نکالیں، یہ نہ پتہ چلے صبح ہی برتن چلنے لگ گئے کیونکہ میں نے تو آج تک ان کو اس میں کھانا نہیں دیا، تم نے کہاں سے دے دیا. لیکن رسک نہ لیں، بازار سے خود لیں، کسی دن جائیں کوئی اچھی سی پلیٹ کوئی گلاس ملے خرید لیں، اگلے دن ناشتے پہ رکھ دیں، میسج لکھ کے رکھ دیں امی ابو کے لیے، آپ کے لیے. چائے پیتے ہیں تو چائے رکھ دیں، ٹھنڈا پیتے ہیں تو ٹھنڈا رکھ دیں. اہتمام کرنے سے یقین کریں لوگ بہت قریب ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح شام کو ان کے آنے کے وقت سے پہلے فریش باہر سے پھول لیں، اس کا ایک اچھا سا گلدستہ بنا کے ان کے پاس رکھ دیں. سسر ہیں گھر میں آئے آتی ان کے پاس گھر کا جوتا رکھ دیں. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ان کو محسوس ہوگا کہ واقعی آپ کیسے کرتے ہیں. اور اسی کے بعد اگلی دسویں چیز جس پہ انشاءاللہ میں اپنی بات کو پورا کروں گی، وہ کہ انٹرسٹ لیں. گھر میں رہنے والے جب ایک دوسرے کے اندر انٹرسٹ نہیں لیتے تو یقین کریں گھر ہوٹل بن جاتا ہے. ہر کمرے میں کوئی رہ تو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کون کیا رہ رہا ہے. سمجھے کیا مسئلہ ہے؟ انٹرسٹ لینا والی بہویں بیٹیاں داماں جو بھی گھر میں آنے لیں، یقین کریں دلوں پہ راج کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ انٹرفیئر کریں، پہلے سمجھیں. کچھ سسرال جو ہوتے ہیں وہ بہت پکی ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں یہ کیوں بولی، کیونکہ وہ سب میں بہو کی نظروں میں بہت حرفن مولا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں. سمجھیں لیکن اس کے بعد دیکھیں کس کا مسئلہ ہے. کوئی چپ چپ رہتا ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی خوش ہے، کیوں ایسے کیوں ہے، اس طرح سے آبزرو کریں کہ پھر اس کے بعد انٹرسٹ لیں کہ ان کے مسئلے ہیں، کوئی پریشانی ہے. ساس ہے تو ان کو آپ کو لگ رہا ہے کہ شوگر کی مریض ہیں، تو آپ کوئی ایسی چیز بازار دیکھیں، دوستوں میں سنیں کہ اچھا جی کریلے کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے، آپ کریلے لے آئیں ان کے لیے پکا دیں، اس کا پانی نکال دیں. یعنی اس قسم کی باتیں کہ جس سے دوسرے فریق کو اہمیت کا احساس ہو. آپ دیکھیں گے کہ اس سے کچھ دن کے بعد وہ بچی گھر میں نہیں رہے گی، لوگوں کے دل میں رہے گی. اور کچھ بہویں حقیقت میں دلوں میں رہتی ہیں. ساری باتوں میں سب سے زیادہ قربانی، محبت، نرمی، صبر، خدمت، عاجزی، برداشت، شکر گزاری لڑکی کو ہی کرنی پڑے گی، یہ ماننا پڑے گا. اللہ نے اس کو یہ کارنر دی ہے. کبھی کسی بات کو ایشو نہ بنائیں، بات کو وہیں ختم کر دیں، کھینچ کے لے جانا لمبی کر دینا اور ادھر سے ادھر وہیں چھوڑ دیں. پھر ایک اور چھوٹی سی ٹپ یہ کہ گھر کو مسلوں کی جگہ نہ بنائیں. بعض لوگوں کے گھر جو ہے نا وہ مسائل استان بنے ہوتے ہیں، ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ، ان مسئلوں کو سلجھائیں. ماں باپ بھی ڈانٹتے ہیں، ساس سسر ڈانٹتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، مسئلہ نہ بنائیں. نند نے کڑوا جملہ بول دیا تو کیا ہوا، آپ یاد کریں آپ کی بہن تو بچپن میں آپ کے بال کھینچتی تھی. اس طرح آپ اپنے آپ کو رکھیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ساری چیزوں میں خیر ہوگی. دیکھیے گھر تو بسانا ہی ہے نا، تو خوشی سے بسائیں. ٹوٹا پھوٹا کیا بسانا، روتے بسرتے کیا ہونا، شادی ادھر ہی ہونی تھی، ہو گئی، اسی کو رہنا تھا، یہی آپ کا نصیب تھا، یہی ملنا تھا اور یہی ملنی تھی. جو لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے نا وہ نعمتوں کو کھو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ الابراہیم میں فرماتے ہیں واستعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. جب تیرے رب نے پکارا کہ اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو یہی اچھے تعلقات کی بنیادیں ہیں. ہم نے 10 چیزیں دیکھیں, ان 10 بنیادوں پہ گھر بنائیے. رشتے 5 قسم کے ہیں, خلاصہ کر دیتی ہوں. سسرال سے بننے والے رشتے 5 قسم کے ہوتے ہیں. شوہر اور بیوی, ساس بہو, سسر بہو, نن بھابھی اور دیور بھابھی, یہ ایک ہی, اور پانچواں اس کے بعد, یعنی آپ کے شوہر کی خالہ ہے, آپ جائیے ملیے. اپنی خالہ سے ملتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں ملیں گے؟ چلے اپنی خالہ کو آپ 100 کی چیز دیتے ہیں, آپ شوہر کی خالہ کو 10 کی دے دیں, دیں. آپ کیوں نہیں سوچتے کہ رشتے تو ادھر بھی ہیں نا؟ عزت کر کے دیکھیں. بعض یقین کرے پھوپھیاں جو ہوتی ہیں نا خاص طور پہ, یعنی جیسے مثال ہے مرد کی پھوپھی, ذرا اس کی بیوی اس کی قدر کرے وہ سب جگہ جا کے سناتی ہیں. میں بھائی کے گھر جاتی ہوں, اس کی بہو میری بڑی خدمت کرتی ہے. دینا کیا ان لوگوں نے آپ سے, بلکہ دعائیں دیتے ہیں اور خوب شہرت ہوتی ہے. ہمارے والد ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ کرنا اپنے لیے اور صحبہ جگ کی, یعنی جو کام اچھا کرتا ہے نا انسان, اس کا فائدہ خود کو ہی ملنا ہے, ظاہر دنیا میں بھی آخرت میں بھی, لیکن لوگوں میں خامخواہ شہرت ہو جاتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. اور 10 چیزیں ہم نے دیکھی, جن کو اپنے اندر لے آئیں گے تو تعلقات خوبصورت ہوں گے. باقی اس کو آپ 2 گھنٹے آگے چلا لیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیے اتنی بات کافی ہے. خدمت ہو, عاجزی, شکر گزاری, محبت, نرمی, صبر, برداشت, ہوش مندی, اہتمام اور انٹرسٹ لینا. آپ کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں نا یا 10 سال ہو گئے ہیں, آج سے یہ 10 چیزیں ریوائز کریں اپنی, آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہم یہاں پہ رکیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں خیر اور برکت ڈال دے, جو گھر جڑتے ہیں ان کو پیار محبت کے ساتھ جڑتے ہوئے رکھے, اور قیامت تک کے ساتھی بنائے, قیامت تک بلکہ جنت تک کے اللہ تعالی ساتھی بنا دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.